हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। आज हम दसवें स्कंद से चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 3 और श्लोक नंबर 27, इसके ऊपर पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मर्त्यो मृत्युव्या लभीता पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाधिगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य सुष्टा श्वेते मृत्युस्मादपेति। मर्त्यो मृत्युव्या लभीता पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाधिगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य सुष्टा श्वेते मृत्युस्मादपेति। मर्त्यो मृत्युव्या लभीता पलायन लोकान् सर्वं निर्भयं नाधिगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य सुष्टश्वेते मृत्युस्मादपेति। हरे कृष्णा। शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, मर्त्य जीव जिनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु व्याल भीता मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत पलायन भागते हुए लोकान विभिन्न लोकों का, सर्वान सभी निर्भयम निर्भिक्तक न अधगच्छत प्राप्त नहीं करता, त्वत्पाद अब्जम आपके चरण कमलों की प्राप्य शरण पाकर यदृच्छया सौभाग्यवश भगवान तथा गुरु की कृपा से, गुरु कृपा तथा कृष्ण कृपा अद्य इस समय सुस्थ अविचित तथा शांत शेते सो रहे हैं, मृत्यु अस्मात उन लोगों से अपेति दूर भागता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग इन चार नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों ना भाग जाए, किंतु हे प्रभु अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। तात्पर्य, जीवों की विभिन्न कोटियां हैं किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्गलोक को जाना है जहां दीर्घायु प्राप्त होती है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, सहस्र युग पर्यंतम अर्हत भ्रमणों विदु। ब्रह्म का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और प्रत्येक युग में 443 लाख वर्ष होते हैं। इस तरह ब्रह्मा की रात्रि 1000 गुणित 430 करोड़ के बराबर होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं, किंतु करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले द्विपार्त काल ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वर्गलोक के वासी 10000 वर्ष तक जीवित रहते हैं और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे 430 करोड़ सालों के बराबर गिना जाता है, स्वर्गलोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है। इसलिए कर्मीजन स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखते हैं किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक को मरना होता है, इसलिए यह जगत मर्त्यलोक कहलाता है। भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं, आ भ्रमण बुना लोका पुनावर्तिनो अर्जुना, जब तक मनुष्य इस लोक में या ब्रह्म लोक अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र वशीभूत होना होता है, भूतवा भूतवा पलियते। किंतु यदि मनुष्य भगवदाम वापस लौट जाता है, यद कर्त्वा न निवर्तन्ते, तो उस काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों की शरण में शरण ले रखी है, उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोना चाहिए। भगवद गीता में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति, इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव की वैधानिक स्थिति शाश्वत है, न हन्यते हन्य माने शरीर, नित्य शाश्वतो यम। प्रत्येक जीव नित्य है, इस जगत में आग गिरने के कारण ही वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और लगातार एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। इस ब्रह्मांड में सारे लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो भाग्यशाली होता है वह गुरु कृपा से कृष्णा भावनी के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, उसका जीवन शाश्वत हो जाता है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी देवकी को लगा, यद्यपि आप हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वे थोड़ा कुछ मोहग्रस्त थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें तथा वसुदेव को इस भय से मुक्त करें। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है उसे इस 10,000 वर्षों की आयु प्राप्त होती है, जिसमें वह अपने पुण्यों के फलों को भोग करता है। यदि हमारे तथाकथित वैज्ञानिक चंद्र लोग जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। अतः हम निस्संदेह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे चंद्रलोक तक पहुँचे ही नहीं। चंद्रमा तक जाने के लिए पुण्य कर्मों की योग्यता चाहिए, तभी कोई वहाँ जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया है तो भला वह इस लोक को फिर से क्यों लौटने लगा, जहाँ जीवन अवधि इतनी कम है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। हम भागवतम के 10वें स्कंद से चर्चा कर रहे हैं और कई श्लोकों में पिछले देखा जाए तो एक भय के ऊपर चर्चा हो रही है। देवकी भयभीत हैं, भगवान प्रकट हुए हैं और आगे ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान अपने आप को, भगवान चतुर्भुज में हैं तो देवकी ये चाहती हैं कि भगवान कंस की नज़र से दूर हो जाएँ ताकि भगवान की रक्षा हो सके। तो जैसे भागवतम के इन प्रसंगों में जहाँ पर जैसे आप देखें कई सारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी भय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आज भी पहली लाइन की इस पंक्ति में तात्पर्य के बता रहे हैं कि हर जीवात्मा यहाँ पर भयभीत रहता है। तो अब जब ऐसे तात्पर्य पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे नरकों का वर्णन है, यहाँ पर इस प्रकार भय की चर्चा है, तो कोई कह सकता है कि अरे भागवतम में भी ऐसा डरा के भक्ति करने का एक ऐसा प्रसंग आते हैं ताकि व्यक्ति डर के भक्ति करे। अगर हम भागवतम के 5वें स्कंद के अंत में भी देखें जहाँ पर नरकों की वर्णन आता है, या फिर 30वें स्कंद में जब कपिल देव भगवान नरकों का वर्णन करते हैं या नरकों की यातनाओं का वर्णन करते हैं, तो हालांकि प्रभुपाद ने भागवतम में भी आता है और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन उन अगर तात्पर्य को पढ़ें या उस प्रसंग को देखें तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उस प्रसंग को बता के चले जाते हैं, उस पर एम्फसाइज नहीं करते, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। हाँ, कि ये है कि ये फैक्ट है, ये एक सत्य है, नरक भी होते हैं, यातनाएं भी होती हैं और हर कोई भयभीत है इस दुनिया में, मृत्यु का भय है, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं किया, उस पर इतना एम्फसाइज नहीं किया, बता के चले गए। और वास्तव में अगर ये चीज़ ना भी बताएं तो अगर देखें 5वें स्कंद के बाद फिर 6वें स्कंद में, अगर नरक की इतनी यातनाएं हैं या इतना भय है इस दुनिया में और इतने सारे नरक हैं, अगर ये चीज़ ना पता लगे तो भगवान के नाम की महिमा भी स्थापित नहीं होती, क्योंकि इतनी यातनाओं को सिर्फ व्यक्ति एक नाम का, भगवान का नाम का जप करके या उच्चारण करके सभी यातनाओं से मुक्त हो सकता है। ये नाम की महिमा है। जब तक कि कोई विपरीत स्थिति ना बताई जाए तो उसकी किसी शक्ति का पता नहीं लगता कि किस कितनी विपरीत कंडीशन में भी या स्थिति में भी व्यक्ति कितना तत्पर रहता है, तो उससे उसकी व्यक्ति की शक्ति का पता लगता है। जब तक एडवर्सरी ना हो तो स्ट्रेंथ का पता नहीं लगता। तो यहाँ पर भागवतम के हर प्रसंग में भक्ति का गुणगान किया गया, शुद्ध भक्ति का। और यहाँ पे एक विशेष रूप से आप तात्पर्य भी जैसे हमने पढ़ा, तो यहाँ पे प्रभुपाद हालांकि भय से शुरुआत करें लेकिन इसका निष्कर्ष दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान की शरण लेके ही भक्त आराम से चैन की नींद सो सकता है, या भक्त को किसी प्रकार का कुछ भय नहीं है अगर वो भगवान की भक्ति में लगाए। तो यहाँ पे भय के ऊपर चर्चा हुई है, थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहेंगे आज हमारे कुछ प्रसंग जिसपे हम चर्चा करेंगे कि भय क्या है, भय का कारण क्या है, और किस प्रकार भय भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे दुनिया में हम जानते हैं कि हर कोई, एक है भय और एक होता है भयभीत होना, एक होना भय कि एक कुछ आगे कोई ऐसा एक स्थिति आने वाली है उसका भय होना। भय और खतरे में भी एक फर्क है कि खतरा एक वास्तविकता है कि कोई खतरा आया, पंखा नीचे गिरा तो अपसाइट हो गए। भय मतलब वो खतरा अभी आया नहीं लेकिन आने की संभावना लगती है व्यक्ति के मन में। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई समस्या हो तो उसका तो हल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं तो उसका हल कैसे करें। तो एक परसीव थ्रेट या फिर एक आने वाला कुछ ऐसी जो स्थिति है जिसको हम आगे गणना नहीं कर सकते कि होगी कि नहीं होगी या क्या उसका निष्कर्ष होगा, उसके बारे में चिंतित रहना। तो और ये देखा जाए भौतिक जगत में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे गहरा जो एक प्रभाव डालता है व्यक्ति की चेतना में, जिसके कारण ही व्यक्ति काम करता है। जैसे शुरू से ही एक बच्चे को सिखा जाता है कि अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या है, शुरू से भय डाला जाता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और हमेशा आपको हतोत्साहित होना पड़ेगा। शुरुआत से लेके अंत तक ये भय और के कारण, जैसे भगवान भी बताते हैं कि लोकानाम लोक पालनम मय भक्त मय भयम कल्प जीवनाम, कि ब्रह्मा जी भी है जो सृष्टि कर रहे हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं वो मेरे भय से चला रहे हैं। तो सृष्टि की चला का पालनहार और सृष्टि जो चल रही है ये भय से चल रही है। हर किसी को भय है आगे मेरे साथ क्या होगा, और अलग अलग तरह के भय हैं। किसी को स्टेज फियर होता है लोगों के सामने बोलने का, कुछ बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, ज़्यादा खुलते नहीं हैं। आजकल भय कैसे होते हैं कि ट्विटर में मुझे अनफॉलो कर दिया या यूट्यूब में मेरा अनफॉलो नहीं हो पाया या मेरी फ्रेंड लिस्ट कम हो रही है, मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो अलग अलग समय के हिसाब से वैसे भय के अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन एक चीज़ है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर किसी चिड़िया को भी देखें इधर उधर देखती रहती है तो हमेशा भयभीत रहता है। अभी मैं जैसे आ रहा था यहाँ पर तो बारिश हो रही थी, तो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था तो लगा था कि चलो ठीक है, लेकिन ऊपर से देखा जो पेड़ शायद मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। तो ये बहुत ही जगत का स्वभाव है कि सोर्स ऑफ शेल्टर बिकम सोर्स ऑफ फियर। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ का हम आश्रय लेते हैं वही भय का कारण बन जाता है। तो मुझे याद आया तो मैंने कहा कि इस क्लास में भी इसको कोट करेंगे कि ये यहाँ से अच्छा सिद्धांत मिलता है। तो अभी जैसे मैं अभी IIT खड़गपुर गए थे पिछले समय भी, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ पता लगी क्या हुआ कि वहाँ पर बता रहे थे कि हर सेमेस्टर वहाँ पर कम से कम ऑन एन एवरेज 4 या 6 सुसाइड हर साल होती है, हर सेमेस्टर में ऐसा कुछ। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है, तो वहाँ के जो इंचार्ज बता रहे थे दिक्कत क्या आती है कि इतना पढ़ने के बाद जब ये IIT वगैरह में आते हैं तो यहाँ पे सोचते हैं कि अब यहाँ पे एंजॉयमेंट करेंगे, यहाँ पे भोग करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो एक आधे दो सेमेस्टर के बाद देखते हैं कि रिजल्ट बड़ा कम आ रहा है तो सह नहीं पाते कि लोग मुझे क्या कहेंगे, एक भय के अंदर ग्रस्त हो जाते हैं कि अब मैं किसी को क्या जवाब दूंगा, मैं तो इतना अच्छा परफॉर्मर था, इतना अच्छा पढ़ाई करता था लेकिन आज मैं नहीं कर पा रहा। तो ऐसे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस भय का आश्रय लेकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। हमें एक अभी भक्त मिले तो जैसे एग्जाम फियर क्या होता है कि जैसे एग्जाम होते हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनको समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, हालांकि पास हो जाते हैं तो हर साल पास होते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले ऐसा कुछ फोबिया हो जाता है उनको, कुछ ऐसा भय हो जाता है। तो थोड़े दिन पहले सोचे एग्जाम देने ही ना जाऊं तो कैसे मना करके भेजा। तो ये भय बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है, जैसे आहार निद्रा भय मैथुनमश, ये भय हर चीज में है। तो जैसे व्यक्ति खाने का भय है, कैसे पेट चलेगा, या नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर खत्म हो सकता है, या सही नहीं सोएंगे, कम सोएंगे प्रॉपर कहते हैं, तो एक दिन क्या, एक दिन जो नहीं सोए तो इरिटेशन होती है, दो दिन सोए तो और डिस्टर्ब माइंड होता है, तीसरे दिन तो क्रेजी हो जाएगा, है ना, कम सोएंगे तो क्रेजी होंगे, ज्यादा सोएंगे तो लेजी हो जाएंगे। तो भय हर चीज में है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये भय का कारण क्या है, भावदम के कई कारण भय के कह सकते हैं कि जैसे कि कोई स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, तो अगर हमने कुछ किया है उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा हमारे हाथ पे तो नहीं है, तो उसका भय हमें होता है। कोई कह सकते हैं कि एक कहावत है जैसे फियर इज लाइक टॉर्च दैट व्हाट होल्ड यू डियर, कि भय उस चीज का होता है जिससे आपको बड़ी आसक्ति होती है, फियर ऑफ डियर, कि जो चीज मेरी बड़ी है, जितना उसमें आसक्ति होती है, जितने उससे हमारे अटैचमेंट होती है, उतना उसके खोने का भय होता है, है ना। और लेकिन भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया कि भय का वास्तविक कारण क्या है। तो बताया गया है भयम, ये प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा ये श्लोक कोट करते थे, भयम द्वितीय द्वितीय अभिनिवेशता स्यात, कि भयम कहाँ, इसका कारण क्या है, द्वितीय अभिविनेशता स्यात। आगे इशाद अपेतस्य विपयो अस्मृति, इन दो पंक्ति में पहले इस श्लोक की बताया गया कि भय का कारण क्या है, वास्तविक भय कहाँ से प्रकट होता है। तो भय का कारण बताया गया है भयम द्वितीय, भगवान से अलग रहकर किसी और चीज पर जब अपनी चेतना को इन्वेस्ट या निवेश किया जाता है तो वो भय का कारण बनता है। दूसरा क्या है, इशाद अपेतस्य, मतलब भगवान से अलग रह के विप्रयो अस्मृति, जब व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, तो वो भगवान को भूल कर अलग अलग चीजों में अपनी चेतना निवेश करता है और ये भय का कारण बनता है। आगे बताया गया तन मायतो बुधा आ भजेतम भक्त एक येषाम गुरुदेवतात्मा, कि अब जब वे व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, अपनी चेतना और चीजों में लगाता है, उसको अलग अलग चीजों से भय होता है। भय का मतलब जब भगवान में उसका निवेश नहीं है चेतना का, तो क्या है वो अपने लिए भयभीत होता है, क्या मुझे मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलने वाला है, क्या मेरा आगे फ्यूचर है, तो उसको असुरक्षित महसूस करता है। तो भय ये होता है अपने लिए, जब व्यक्ति सेल्फ सेंटर हो जाता है, भगवान को भूल जाता है और अपनी ही चिंता करता रहता है, वहां से भय की उत्पत्ति होती है। ओ तन माये तो, है ना, बुधा आ भजेतम, तो क्या है, जैसे ही व्यक्ति भगवान को भूलता है तो माया में ये सोचता है कि मैं ही एक भोक्ता हूं और अपनी वास्तविक चेतना को भूल जाता है। तो इसमें श्लोक में बताया गया ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको पता है कि अब ये ज्ञान कि भय भगवान की विस्मृति से होता है, तो क्या करना चाहिए उसे, बुधा आ भजेतम भक्त एक येषाम गुरुदेवतात्मा, गुरु के निष्कर्ष के निर्देशन में रह के भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और इस भय से मुक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं उनको भय से डरने लगना चाहिए, वो भयभीत होने चाहिए उनको। और जब मैं अमेरिका आया था तो मुझे बिल्कुल भय नहीं था और मैं बिल्कुल फेयरलेस आया था कि जो भगवान की इच्छा होगी, नचाओ नचाओ से नचाओ मते, हाँ काठिए से पुतली नचाओ से मते, जैसा नचाना भगवान नचाइए, मुझे कुछ डर नहीं है, आपकी इच्छा है तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए। अब क्या है, तो भय का तो ये उत्पत्ति यहाँ से कृष्ण की विस्मृति से हो गया, यहाँ पे भागवतम के श्लोक में पढ़ा। अब रूप गोस्वामी उपदेशामित में लिखते हैं 12 प्रकार के जो रस आते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि 12 प्रकार के जो रस हैं उसमें से एक रस इसमें भयंकर भी लिख रहे हैं, भयानक भयानक भयानक, है ना। तो हर गुण भगवान की, हर इमोशन भगवान की सेवा में लगाया जाता है, लगाया जा सकता है और वो एक भक्ति का अंग है। वही भय जब हम अपनी चेतना में रहते हैं, अपने शरीर की चेतना में रहते हैं या अपने आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो हमारे भय का कारण बनता है जिससे हम भयभीत होते हैं। और अगर वही भय अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए, जिसको हम कहेंगे सकारात्मक भय या हेल्दी फियर, जब वही भय भगवान की चेतना में लगाया जाए या भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो वही भय हमें शुद्धिकरण का हमारा कारण बनता है और हमें भक्ति में वृद्धि कराता है। जैसे उदाहरण के लिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसको बताते हैं कि इसी प्रसंग में दसवें स्कंद के दूसरे अध्याय के आठवें श्लोक में कि जहाँ ये जो देवकी की तुलना की गई है एक भक्ति के साथ की गई है, और जो ये षड गर्भासुर हैं जो छह पुत्र हैं जिनकी कंस ने हत्या करी थी, और कंस की जो तुलना की गई है वो की गई है एक एक भय जो भौतिक संग का भय है उससे इसकी तुलना की गई है, और जो ये छह पुत्र हैं मारीच जी के जो छह पुत्र थे इनकी तुलना की है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो जब हम भौतिक प्रभाव इसके तात्पर्य समझाते हैं कि एक शुद्ध भक्त हालांकि बिल्कुल लिबरेटेड है मुक्त है, तो मुक्त रहते भी वो इस जगत में रहता है तो उसको ये लगता है कि इस जगत में तो मैं रह रहा हूँ तो मुझे ये जगत कहीं दूषित ना कर दे, इसलिए हमेशा ये डरता है इस बात से कि मैं इस भौतिक जगत में या भौतिक संघ में ना फंस जाऊँ या इस संघ से दूषित ना हो जाऊँ, और यही भय प्रॉपर समझाते हैं उसको शुद्ध करता है। तो और आगे बता रहे हैं कि यही भय उसमें भक्ति को उत्पन्न करता है, क्योंकि जब ये भय था कंस का भय है ना, कंस था तो छह गर्भासुर थे जो छह पुत्र थे देवकी के थे जिनकी तुलना छह अनर्थों से की गई है, भय के कारण ही ये सारे अनर्थ खत्म हुए थे। तो एक हेल्दी फियर, एक सकारात्मक भय कि हाँ मैं भौतिक संघ में ना फंस जाऊँ, मैं पुरानी उन्हीं अनर्थों में ना फंस जाऊँ या उन्हीं इस भौतिक संघ से मैं प्रभावित ना हो जाऊँ। तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसे प्रार्थना कर रहे थे तो एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना करें भगवान से, तो उन्होंने कहा कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं कभी माया में ना गिरूँ। तो एक शुद्ध भक्त भी ऐसी प्रार्थना करता है कि मैं कभी माया ना गिरूँ, और प्रभुपाद ने कहा उसके बाद कि अगर हर कोई ये भक्त प्रार्थना करे कि मैं माया में ना गिरूँ डेली तो वो कभी माया में नहीं गिरेगा। एक बार ऐसी एक महाराज यहाँ पर प्रवचन ले रहे थे इसी के ऊपर प्रसंग के ऊपर, तो जैसे हम खाना नहीं बोलते रोज, तो निरंतर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें रोज भिगरों के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं करें कि हम भौतिक संघ में ना गिर सकें, तो आकर ऐसी प्रार्थना करते हैं तो प्रॉपर समझाते हैं कि वो व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा। दूसरा एक दो इंसिडेंट मैंने देखा हिजनौज गोपाल कृष्ण महाराज के चरित्र से, तो एक बार महाराज से जब ये महाराज की मसाज करने जाते हैं शाम को रात के समय, तो जैसे ही हम आते हैं सबसे पहले महाराज कहते हैं कि आप क्यों आ गए, आप वैष्णव से सेवा लेके तो मैं माया में गिर जाऊंगा। तो और दूसरा एक बार जब महाराज साउथ इंडिया की यात्रा में थे, मतलब साउथ इंडिया गए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे एंगेजमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए रहना है और कुछ ऐसा काम नहीं था, तो उन्होंने बुक्स उठाई और बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वयं चले गए, और साथ में असिस्टेंट सर्वेंट थे, उन्होंने पूछा कि महाराज आपको क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसे खाली रहूंगा तो मैं माया में गिर जाऊंगा, कुछ तो करूं प्रभुपाद जी के लिए। तो एक शुद्ध भक्त भी ऐसे भगवान के भौतिक संग में ये भगवान की भक्ति में लगे रहने का कल्पना करता है। अच्छा, भक्त को सबसे बड़ा भय क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? जितने भी भय हैं सबसे बड़ा भय भक्त के लिए क्या होता है? भक्तों का संग ना छूटे, ये भी बड़ा भय नहीं है? और बताइए। सबसे बड़ा भय एक भक्त को लगता है और उसी के कारण कई सारे सकारात्मक वो स्टेप लेता है, चाहे भक्तों का संग ना छूटे या जप ना छूटे। वैष्णव प्रात ना हो, कुछ फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, कि भगवान का विस्मरण ना हो। भक्तों का संग क्यों चाहिए, वैष्णव प्रात क्यों नहीं करना? क्योंकि भगवान का विस्मरण ना हो। तो एक भक्त को सबसे बड़ा भय ये रहता है, उसी को ये सारे भय फैसिलिटेट करते, उसी को सहायक होते हैं। जो गुरु साधु शास्त्र हैं तो इन्हीं का यही, गुरु साधु और शास्त्र इनका जो हमें, ये हमारे सहायक होते हैं ताकि हमें कृष्ण की स्मृति दें, कृष्ण का विस्मरण हमारे बचाएं। तो जितने भी नियम होते हैं उनका यही नियम है कि कृष्ण को कभी ना भूलें और भगवान को हमेशा याद रखें, कृष्ण को हमेशा याद रखें। तो सबसे बड़ा भय एक भक्त को ये लगता है कि भगवान, चाहे हम कहते हैं माया में ना गिरें, चाहे भक्तों का संग करें, चाहे प्रजल्पा नहीं करना, तो इसका एक ही कारण होता है कि कृष्ण की स्मृति हमसे ना छूट जाए। तो और जब ये सकारात्मक भय होता है तो व्यक्ति सही डिसीजन लेता है, एक बार ऐसी घटना है कि एक भक्त एक अपने काउंसलर के पास गए, रियल घटना है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा भय लगता है किसी से बात करने में, इन पर्टिकुलर भक्त से बात करने में बड़ा भय लगता है। तो उन्होंने कहा कि अगर भय लगता है तो यानी कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए भय लगता है। नहीं, सब ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चला तो भय क्यों लगता है? यानी क्या है, इससे एक समझने वाली बात है, जब भी हमें किसी भक्ति की प्रक्रिया में कुछ भय लग रहा है, इसका मतलब कृष्ण भी कुछ सिग्नल भेजते हैं, है ना। हमें पता है कि हमारा जब ठीक नहीं हो रहा, तो कृष्ण सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। और अगर सही से सिंसियरली भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ अपराध भी हो रहे हैं तो वो भी पता लग जाते हैं, कृष्ण सिग्नल भेजने शुरू कर देते हैं। क्योंकि कृष्ण भी नहीं चाहते कि हम उनके उनसे दूर होए या उनका स्मरण हम छोड़ दें। इसलिए भगवान ऐसे भय के रूप में अंदर से कुछ सिग्नल भेजते हैं, चाहे प्रजल्पा को लेके, चाहे कहीं वैष्णव निंदा हो, चाहे अपराध को लेके, है ना। तो एक केयरफुल कॉन्शियंस या एक विवेक बुद्धि भगवान देते हैं कि आपको सचेत रहना है। और वास्तव में जो ये सचेत रहना, ये सत्वगुण का लक्षण है कि जब व्यक्ति अच्छे से भक्ति का प्रयास कर रहा है, सत्वगुण में आने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ भी गलती करता है उसको पता लगना शुरू हो जाता है। और वास्तव में कृष्ण ऐसे सिग्नल देते हैं तो व्यक्ति अलर्ट रहता है, एक हेल्दी फियर कि हाँ, मैं सही से भक्तों से डीलिंग करूँ, मैं सही से शास्त्र पढ़ूँ, सही से अपनी सेवा की जिम्मेदारी निभाऊँ। और तो इस प्रकार, तो ये इसके लिए बहुत अनिवार्य भी कि हम सत्वगुण का विकास करें, ताकि कुछ ऐसे गलतियाँ हो भी रही हों तो हम सचेत हो जाएंगे। और कृष्ण ऐसे सिग्नल भी भेजते हैं। तो आगे जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में भी, अगर एक बार जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे आग्रह कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु से कि आप प्रताप रूप से जाके मिलिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मिलने नहीं जाते उनसे कि मैं कैसे किसी विषय से मिलूं, है ना। तो अगर विषय से मिलूंगा तो वहां से मैं प्रभावित ना हो जाऊं। चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य के रूप में ये दिखा रहे हैं कि भौतिक संघ में जाने से डरना चाहिए, है ना। कहीं तो प्रभुपाद कहते थे, मेरे एक ये एक सातवें स्कंद में लिखते हैं कि एक रेगुलेटिंग प्रिंसिपल है कि वन शुड फियर माया। एक रेगुलेटिंग प्रिंसिपल को इस प्रकार से लेना चाहिए, सातवें स्कंद के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक में ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कि इसको एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल मान के चलना चाहिए कि उसे माया से डरना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं, मुझे अपने शिष्यों से यही कंप्लेंट है कि वो माया से, दे डोंट फियर माया इनफ, उतना नहीं डरते जितना डरना चाहिए। तो अब कुछ चीजें जैसे मैंने सोची थी कि किन चीजों पे विशेष रूप से अगर भक्त ध्यान रहे, उसमें से एक मुख्य विशेष जो मैं अपने अनुभव से ये शेयर करना चाहता था कि भय किन किन चीजों पे रखना चाहिए और अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो। खासकर सबसे पहले वैष्णव निंदा से, है ना। सो निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लब्धे, रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने का एक बहुत ही सरल उपाय होता है कि व्यक्ति भगवान वैष्णव का गुणगान करे। और जब हम किसी के बारे में सुनते भी हैं और या कुछ खुद निंदा करते हैं, तो क्या होता है कि एक वैष्णव के प्रति सुनने से तो इमेज बन जाती है, और अगर खुद कर रहे हैं तो एक अपराध बन जाता है। तो उस वैष्णव को फिर उतना आदर नहीं दे पाएंगे। भादम के 11वें स्कंद में लिखा है कि अगर हम जिसका गुणगान कर रहे हैं तो उसकी उतनी प्रगति, जितना भक्त वो प्रगति कर रहा है, उसका गुणगान कर रहे हैं हम हृदय से, तो उतनी प्रगति स्वयं हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा वैष्णव को सम्मान से देखें और ऐसे भजन गाएं, और एक हेल्दी फियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद फिर आगे के सारे अनर्थ शुरू होते हैं। तो सतर्क रहें, कभी किसी के बारे में ना बोलें ना सुने। इस पे महाराज भी बड़ा जोर देते हैं कि कोई कहे कि कोई वैष्णव निंदा करे, तो महाराज बताते थे कि अगर आप कोई करे भी तो कान बंद कर लीजिए, कहिए मैं आपका इतना डाइजेशन है, मेरा तो इतना डाइजेशन नहीं है, आप पचा सकते हैं लेकिन मैं नहीं इसको पचा सकता, इसलिए बेहतर है मुझे मत बताइए। तो किसी की निंदा ना सुने, एक हेल्दी फियर है। ये फियर रहेगा तो ना फिर हम निंदा करेंगे और हमेशा गुणगान के बारे में सोचेंगे, और मन भी बड़ा एब्जॉर्ब रहता है इससे। इसको हम उस सेंस में नहीं कि बहुत ही भयभीत हो जाए, मेरे से वैष्णव अपराध हो जाए, एक फोबिया की तरह ना ले, एक हेल्दी फियर, एक अलर्टनेस, एक सचेत बुद्धि कि हाँ इसका ध्यान रखना है, ये मेरे से, मैंने देखा कि कुछ अभी चतुर्मास से चल रहा है तो कुछ भक्तों ने ये वो ले लिया कि मैं कभी वैष्णो निंदा ना करूँगा, चार महीने के अंदर बिल्कुल नहीं करूँगा, और देखते हैं फिर बड़ा संघर्ष होता है। तो जब जैसे प्रोजी भी ने अभी नामर्थ सेमिनार लिया था तो बताते जब ध्यान पर जब करने का प्रयास करते हैं तो पता लगता है कितना हम इनअटेंटिव रहते हैं। इसलिए जब हम ये वाव लेते हैं कि वैष्णो निंदा नहीं करनी तो पता लगता है कि कितनी कितनी जगह ये चल जाता है, हो जाता है हमसे। तो ये बड़ा अच्छा मेरे को लगा एक वाव लेना इसका कि वैष्णो निंदा बिल्कुल ना करना, और इससे वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, हमारी चेतना भी बड़ी शुद्ध होती है। तो ये हेल्दी फियर है, ये सकारात्मक जो भय है, ये हमारे शुद्धिकरण का कारण बनता है, हमें शुद्ध करता है। और जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे, ये हमारी भक्ति को प्रकट करता है, है ना। और दूसरा कि प्रजल्पा से बचें, जैसे भौतिक न्यूज़, है ना, विशेष रूप से भौतिक न्यूज़ देखना, उसकी चर्चा करना, बहुत ज़्यादा चर्चा करना, ठीक है, एक संसार के से अवगत रहना चाहिए क्या अपडेट हो रहा है, क्या चीज़ है, ताकि प्रचार उसकी शैली उस प्रकार से ढाली जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें लगने से एक, क्योंकि आजकल ये एक फियर, एक सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है। मायापुर में भी एक महाराज बता रहे थे कि हमारी सोसाइटी में सबसे प्रोमिनेंट क्या चीज़ चल रही है, गॉसिपिंग, प्रजल्पा बहुत हो रहा है। आज से कुछ साल पहले नहीं था, क्योंकि शायद सोशल मीडिया बढ़ गया है या फिर जो भी इतना नेटवर्क बढ़ गया है तो उसके कारण प्रजल्पा भी बढ़ गया भक्तों का। तो इसके लिए बड़ी बड़े सचेत रहना चाहिए कि हाँ, मैं भौतिक न्यूज़ की चर्चा कर रहा हूँ या फिर आध्यात्मिक चीज़ों के विषय की चर्चा करें। और भगवान को क्या प्रसन्न करता है, बोध्यंत परस्पर मत चिता मत गत प्राणा, है ना, बोध्यंत परस्परम तुष्यंति च रमंति च। भगवान को भी ये आपस में कृष्ण कथा जब भक्त करते हैं तो बहुत प्रसन्न करती है। तो आजकल थोड़ा सा ये कॉमन, मतलब एक अनुभव से हम कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत अच्छा इसमें कर रहे हो, लेकिन शास्त्र की जो पढ़ाई है वो कम ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, लेकिन यूट्यूब में जो अलग चैनल से या भारी न्यूज़ है ये ज़्यादा थोड़ा शुरू हो गया। तो अगर किसी से पूछे आजकल क्या पढ़ रहे हो तो थोड़े से व्यक्ति के लिए खो जाता है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या मनन में चल रहा है। तो भक्तों को ये अनुभव लेना चाहिए कि शास्त्र को पढ़ के उसमें रमे उसमें। तो मैं जैसे, मेरा अच्छा अनुभव रहा कि मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया तो मैं बहुत ही एब्जॉर्ब रहा शास्त्र के अंदर, तो कहाँ से क्या देखना है, कई सारी मैंने रिसर्च करी, कई सारे चीज़ों को देखा, तो इसमें माइंड या मन बहुत ही कृष्णा भ्रमित होने लगा। तो बाहर की संसारिक चीज़ों का या प्रजल्पा करके या उसमें रमने से अच्छा है शास्त्रों को पढ़ें, उसमें रमें और भक्तों से चर्चा करें। तो इससे आपका भी शुद्धिकरण होगा और आप माध्यम बनेंगे, दूसरों का भी शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि कुछ पढ़ेंगे तो कुछ शेयर करने की इच्छा जरूर आएगी, अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ शेयर करने की इच्छा जरूर आती है। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जब हम एक विग्रह के सामने, कि हम विग्रह के सामने जाएं और प्रार्थना डेली करें, ये एक, ताकि मैं इस भौतिक संग में ना फंस सकूं, और एक ये मेरे में डर बना रहे कि मैं भक्ति से च्युत ना हूं। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं, जैसे एक रुक्मिणी देवी का भी प्रसंग आता है, बस इसको देखे हम करेंगे। तो एक भक्त हमेशा ये डरता है कि मैं भौतिक संग में ना गिरूं। तो जब भगवान ने रुक्मिणी देवी से एक मजाक किया कि आपने गलती करी है मेरे से विवाह करके या मेरे साथ रह के, तो हाथली रुक्मिणी देवी को लगा कि ये तो भगवान सच बोल रहे हैं, उन्हें बड़ा सीरियसली ले लिया। तो उनको भय लगने लगा, क्या, कि अब मैं कृष्ण को खो ना दूं। तो ये भय जो भक्त को, भक्त के लिए सबसे बड़ा भय है द फियर ऑफ लूजिंग कृष्णा और द फियर ऑफ फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा, कि भगवान की विस्मृति का भय, कि हम इस कृष्ण भावित आंदोलन में आए कृष्ण भावित बनने के लिए, आगे आगे जितना हम बढ़ें उतना कृष्ण भावित बढ़नी चाहिए, उतना कृष्ण कॉन्शियस होने चाहिए, उतना शास्त्रों में, उतना वैष्णव की सेवा में, उतना हरिनाम में रुचि बढ़नी चाहिए। तो अगर कहीं रुक गई है गाड़ी तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो भक्ति का प्रयास करके, भगवान की शरण लेके, भगवान से प्रार्थना करके, वैष्णव से गाइडेंस लेके इसका निवारण करें, भक्ति में आगे जो प्रगति लगता है रुक गई है तो उसको आगे बढ़ाएं। तो इस पर हम इतना ही चर्चा करना चाहेंगे। कुछ किसी के अगर प्रश्न हो, अभी 5 मिनट हम पहले कर रहे हैं तो हम कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं। तो आज हमने चर्चा करी थी, बेसिक मैं इसको समराइज कर दें कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में हर कोई भयभीत है और भक्ति की महिमा इतनी है कि भक्ति का पालन करके भगवान की शरण लेके व्यक्ति हर प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे भय का वर्णन इसलिए किया ताकि भक्ति को गुणगान कर सके, भक्ति का गुणगान हो सके। और दूसरा हमने ये चर्चा करी कि भय के कारण क्या है। भय का मेन कारण कि भगवान की विस्मृति है ना, इशाद अपेतस्य विप्रयो अस्मृति, भगवान की विस्मृति ही भय का कारण है। हम कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है इसलिए हमें पता नहीं क्या रिजल्ट या क्या आउटकम रहेगा, इसलिए हम भयभीत हैं। लेकिन व्यक्ति भयभीत होता है तब जब उसकी भगवान से चेतना हट के दूसरी चीज़ों में चली जाती है, और फिर एक हेल्दी फियर, एक सकारात्मक भय हर भक्त को होना चाहिए, जो इस सत्वगुण के विकास से व्यक्ति इसको विकसित कर सकता है। हर चीज़ में सचेत रहे कि क्या करें, प्रभुपाद कहते थे पहले कॉन्शियस बने फिर बाद में कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, तो पहले सचेत बने। और प्रभुपाद जी और अलग भक्त अन्य भक्तों के उदाहरण से हमने देखा कि वो भी इस भय को मेंटेन करते हैं। एक भक्त को भौतिक संग में जाने से डरना चाहिए, इससे उसकी भक्ति का उजागर होगा, इससे वो शुद्ध होता है। और कई उदाहरण से हमने इस पर चर्चा करी कि किस प्रकार चाहे वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध और प्रजल्पा, भगवान के विग्रह से जाके प्रार्थना करना ताकि इस संग में ना हम गिर सकें। हरे कृष्णा। तो आपका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस ये 11वें स्कंद में लिखा है, मैंने पढ़ा था कि जैसे कहा था कि जैसे किसी भक्त का हम गुणगान करते हैं तो भक्त जो प्रकृति करता है तो हमारी भी प्रकृति होती है। तो 11वें स्कंद में लिखा है, मैं एग्जैक्ट आपको कोट बता दूंगा। तो इनका प्रश्न है कि भगवान की भक्ति से कृष्णा कॉन्शियस से हम हर प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं, तो फियरलेस का मतलब क्या है और एक हेल्दी फियर में क्या डिफरेंस है, अभय और एक सकारात्मक भय में क्या फर्क है। हालांकि जो ये भय की चर्चा करते हैं हम कि ये जो भय जो सकारात्मक भय है, ये भय हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है कि मुझे, मतलब हमारे लिए नहीं है, अपने लिए जो व्यक्ति भयभीत रहता है, ये भय इसलिए है ताकि हम भगवान के विस्मरण को या भगवान की स्मृति को ना भूलें। ये भय जो है कृष्ण के लिए, और ये रूप गोस्वामी कहते हैं एक रस भी है, कृष्ण के साथ कोई भय में भी रस ले सकता है जैसे वीर रस होता है। और वास्तव में यही जो भय है अभय प्रदान करता है ना, कि जब व्यक्ति को एक सकारात्मक भय रहता है कि मैं भगवान की विस्मृति ना हूं, जब भगवान के प्रति वो सचेत रहेगा इस प्रकार से तो हमेशा अभय रहेगा है ना, तो अपने लिए अभय हो जाएगा है ना। जब भगवान की उसके दृष्टिकोण में या गॉड सेंट्रिक या कृष्ण सेंट्रिक होता है तो अपने लिए भय खत्म हो जाता है कि मेरी कैसे सुरक्षा होगी, मुझे कौन देखेगा, मेरे क्या आगे क्या निष्कर्ष होगा, तो वास्तव में तब वो रियल फियरलेस या रियल फ्रीडम कह सकते हैं फ्रॉम फियर। और कुछ हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।